हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 31, 32 एंड 33। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्कारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमा श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तत्थाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासनां व्रजवधु वर्गेण या कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्म्यतमिदं तथा ग्रहो न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुठेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वेऽपि वस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। ब्रजेव सन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां सदुकूलचोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामम् मनसास्मरामि वंशे विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भयधरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं ग्रन्थराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंध तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। गजेंद्र ने अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान की स्तुति की जिसको सुनकर त्रिलोकी के नाथ देवताओं के स्वामी जगन निवास भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान गजेंद्र के सामने प्रकट हुए हैं शुकदेव गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान के वात्सल्य भाव के विषय में बताते हैं कि कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। वो अपने वैभव को अपने ऐश्वर्य को अपने स्टेटस को नहीं देखते कि मैं भगवान हूँ त्रिलोकी का नाथ हूँ और मैं जाऊँ एक गज को ग्राह से छुड़ाने। नहीं, भगवान केवल एक दुखी हृदय की पुकार सुनकर उसी क्षण अपने वैकुंठ से नीचे आते हैं और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत्राखिलामरमयो हरिराविरासित कि उसी समय हरि आविरासित उसी समय हरि साक्षात वहां पर प्रकट होते हैं। और जैसे भगवान तो तत्राखिलामरमयो सारे जितने अमर यानी देवता हैं वो सब भगवान के ही अंग स्वरूप हैं, भगवान के ही अंश हैं, तो जैसे भगवान वहां पर प्रकट हुए तो उनके साथ साथ सारे देवता भी वहां पर आए। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 31 में कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। तम तत्वदार्थम उपलभ्य जग निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजय सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समोह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रम् निशम्य दिविजय सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समोह्यमानः चक्रायुधोऽभ्य गमदाशु यतो गजेन्द्र तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समोह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र। तम तद्वदार्थ, तम मतलब उसको, किसको? गजेंद्र को, तत्वत उस तरह से गजेंद्र को, क्योंकि ग्राह ने बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था, बहुत दुखी हो रहा था, उसको बहुत कष्ट हो रहा था, हजार साल तक उसने युद्ध किया था। और इस प्रकार से उपलभ्य, उपलभ्य मतलब समझा, भगवान ने जब देखा, इस प्रकार देखा कि गजेंद्र बहुत दुखी है, इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र को तम तद वधार्थ, आर्थ का मतलब होता है जब कोई बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, दुखी होता है, तो क्योंकि अब गजेंद्र बहुत ज्यादा दुखी था, आर्थम का मतलब होता है बहुत दुखी था, एक तो हजार साल उसने बहुत उसके साथ युद्ध किया था, उसके कारण बहुत ज्यादा थक गया था, वो समुद्र में था और वो उसको कुछ खाया पिया भी उसने नहीं था, इसके कारण भी बहुत दुखी था। इसके अलावा अब उसे ये ज्ञात हो गया था कि ये माया का बंधन है और इस माया के बंधन के कारण भी वो बहुत दुखी था। तो भगवान जान गए, भगवान बहुत दूर से जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहा था तो भगवान अपने धाम में थे और अपने धाम में ही आर्तम अपने भक्त को दुखी देखा, तो फिर उन्होंने देर नहीं की तो वो चले गरुड़ पर चढ़कर, और वो अकेले नहीं, आगे कहते हैं स्तोत्रम निशम्य देवी जय सहसंस्तु, निशम्य देवी जय, स्तोत्र मतलब स्तुति करते हैं। अब जब भगवान चलते हैं तो भगवान ऐसा नहीं है कि अकेले कोई जा रहे हो बस इधर से, जैसे यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है तो अकेले थोड़े ना जाता है, उसके तो करोड़ों नौकर आगे पीछे घूम रहे होते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति जा रहा होता है तो उसके साथ कितने सारे गाड़ियां बड़ी बड़ी है ना, एरोप्स और ये चल रही होती है ना, अकेले अकेले थोड़े ना जा रहा होता है। तो भगवान भी जब जाते हैं तो सारे पार्षद, कौन से? दिविजय मतलब जो स्वर्ग में रहते हैं, जो स्वर्ग के प्राणी होते हैं, जिनका जन्म स्वर्ग में होता है, वो सारे सह संस्तुवत भी, वो सब सब भगवान के सह मतलब उसके साथ साथ स्तुवत भी, स्तुति करते हुए जाते हैं। तो भगवान के जो पार्षद होते हैं उनका कंठ इतना सुरीला होता है, बहुत ही सुंदर रीति से भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े गंधर्व होते ना उनसे भी अच्छी उनका कंठ होता है, और उनके पार्षद सदैव भगवान की स्तुति करते रहते हैं, आगे पीछे मंडरा रहे होते हैं, और साथ में जो गरुड़ है, यहाँ पर पता है छंदो मये न गरुड़े न समोहियमान, तो जो गरुड़ है वो भी छंदो मये न है, मतलब उनकी इच्छा की गति से चलते हैं, जैसे भगवान चल रहे होते हैं, भगवान की इच्छा होती है ना, मन भगवान के मन की गति से चल रहा होता है। जैसे हमारा मन कैसे चलता है, अभी हम बैठे हुए हैं और हम सोचें कि हमें वृंदावन के विषय में, फौरन मन लेके जाएगा वृंदावन, ये नहीं सोचेगा वृंदावन, वृंदावन के लिए तो आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, इतना समय लगेगा, 24 आवर्स का तो खाली सफर है, इतना सब कुछ नहीं बताएगा, आपको फौरन से वृंदावन लेके जाएगा। उसी तरह भगवान का मन जिस गति से कहीं जाना चाहता है, भगवान की जैसी इच्छा होती है, उसी तीव्रता के साथ बहुत ही गरुड़ एक पंख मारते हैं और सैकड़ों माइल्स, करोड़ों माइल्स दूर तक लेकर जाते हैं, बहुत ही विशाल उनकी गति है, मन की स्पीड बहुत उनकी तेज होती है, और साथ में वो उनके जो पंख हैं उसके अंदर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े दो पंख हैं, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत ही सुंदर चमकीले रंग के पंख हैं, और जब वो हिलते हैं ना, अपने पंखों को हिलाते हैं, तो उसमें से भी बहुत सुंदर साउंड, जिस प्रकार हारमोनियम का साउंड निकलता है ना, जैसे जो भी गाना मतलब हम गाते हैं, जो भी गीत गाया जाता है, हारमोनियम उसी की तरह से साउंड कर रही होती है, उसी प्रकार भगवान के साथ चलते हुए पार्षद जैसे जैसे स्तुति करते हैं तो गरुड़ के पंख में से वैसी ही साउंड निकलती है, और सामवेद की ध्वनि निकलती है, साम जैसे वो चल रहे होते ना, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं तम तद्वदार्थम उपलब्ध जगन निवास। जब जगन निवास भगवान जो कि संपूर्ण जगत के हृदय में रहने वाले भगवान हैं, उन्होंने जैसे ही गजेंद्र की प्रार्थना सुनी और उनको दुखी जाना, तो उसी समय वो उनकी रक्षा करने के लिए चले और उनके साथ साथ सारे देवी देवता भी उनके साथ साथ आए। वो गरुड़ पर छंदोमयेन गरुड़ेन समूहयमान, वो गरुड़ के ऊपर सवार थे और अकेले नहीं आ रहे थे, साथ में चक्रायुधोभ्यगमदायुष जाशुयतो गजेंद्र। वो चक्रायुध, एक तो उनके हाथ में चक्र था और दूसरे में आयुध थे, क्योंकि अब मेरा भक्त संकट में है तो हथियारों की आवश्यकता होगी ना, इसलिए सारे हथियार लेकर आए। और कोई देर नहीं की, आशु, आशु का मतलब होता है बहुत तीव्र गति से, बहुत ही तेज, या तो गजेंद्र, जहां पर गजेंद्र थे वहां पर भगवान उसके पास गए और उनके साथ साथ सारे देवता। अब ये सारे देवता भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे और बहुत लज्जित थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान को इतने थोड़े से काम के लिए आना पड़ रहा है, मतलब हमको ये काम करना चाहिए था, हम भगवान के दास हैं, अब ये छोटे छोटे कार्य करने के लिए भगवान को साक्षात आना पड़ेगा। तो भगवान ने उनको कुछ बोला नहीं कि आप मेरे साथ साथ आओ, लेकिन वो फिर भी सारे गए, क्योंकि अब स्वामी आ रहे हैं तो वो ऐसे कैसे वहीं पर बैठे रहेंगे। जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सरकारी आदमी जा रहा हो तो अचानक से अगर राष्ट्रपति आ जाए, है ना, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो फिर वो उसको बोले नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो कोई भी सरकारी आदमी होगा तो उसके साथ जाना पड़ेगा ना उसको, कि मेरी ड्यूटी है क्योंकि ये हमारे हेड हैं, सीनियर हैं, तो उनके साथ हमें जाना चाहिए। तो सारे देवता, इंद्र, ब्रह्मा जो जितने भी हैं, वो सारे भगवान के साथ साथ चल रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अनुवाद देखिए, गजेंद्र की प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि उन देवताओं समेत वहां पर प्रकट हुए, उनकी स्तुति कर रहे थे। अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छा अनुसार गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से संकेत किया है कि चूंकि गजेंद्र अत्यधिक संकट में था और भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना कर रहा था, अतएव देवता वहां जाने से सकुच आए। यद्यपि वे रक्षा करने के लिए तुरंत जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गजेंद्र की प्रार्थना भगवान को लक्ष्य करके की गई है, अतः उन्होंने इसको अपमान समझा, किंतु यह स्वयं में एक अपराध था। फलस्वरूप जब भगवान वहां गए तो वे भी गए और उन्होंने भगवान की स्तुति की जिससे उनका अपराध क्षमा हो सके। मतलब अब जैसे गजेंद्र जो है वो भगवान को पुकार रहा था, लेकिन ना कोई बड़ा होता है सीनियर, उसको अगर बुला रहे हैं तो उसके जो दास दासी हैं उनको खुद ही काम करना चाहिए था ना, लेकिन देवता में थोड़ा सा अभिमान, जैसे कल हमने पढ़ा था कि उनके अंदर नाम रूप भेद का अभिमान होता है कि हमें थोड़े ना बुला रहे हैं, तो एक तरह से उनका अपराध हुआ ना, क्योंकि भगवान को आना पड़ा है छोटे काम के लिए। लेकिन तो फिर वो अपने अंदर से लज्जित हो रहे थे और इसीलिए वो भगवान के साथ साथ जा रहे थे और विभिन्न प्रकार की स्तुतियां भी कर रहे थे कि हमसे अपराध हो गया था, हम मतलब लज्जा के कारण स्तुति कर रहे थे ताकि उनका ये अपराध क्षमा हो। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 32 में, सोन्त सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्भुजकर गिरमाह क्रीच्र नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। सोंत सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह च क्रीच्छा नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते सोंत सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह क्रीचान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते सोंत सरसयु सरस युरुबले यानी सोंत सरसी का मतलब होता है जल में, क्योंकि गजेंद्र अभी जल में थे तो उस समय गजेंद्र एक जल में बलेन गृहीत आर्तो बहुत ही महाबली घड़ियाल के द्वारा बहुत दुखी थे, आर्त थे, जल में भी थे और घड़ियाल ने उनको पकड़ा हुआ भी था और बहुत ज्यादा दुखी थे। तो दृष्टवा जब भगवान ने ये देखा तो गरुत्मति हरिम का उपात्त चक्र भगवान आए और बहुत दूर से भगवान जैसे, क्योंकि भगवान का जो चक्र था वो घूम रहा था तो उसको बहुत दूर से ही गजेंद्र ने देख लिया। एक तो भगवान बहुत गरुत्मति यानी बहुत ही सुंदर गरुड़ के ऊपर बैठे हुए थे, बहुत ही श्वेत रंग का चमकदार गरुड़ का शरीर था और हरिम यानी भगवान को खे आकाश से जब वो आ रहे थे उपात्त चक्र उनका चक्र घूम रहा था। भगवान श्याम वर्ण के हैं, श्वेत वर्ण का गरुड़ है और उसके ऊपर चमकदार चक्र घूम रहा है तो बहुत दूर से, जैसे सूर्य देखो कितना दूर होता है लेकिन हमें दूर से दिख रहा होता है ना, तो गजेंद्र नीचे था लेकिन उसके नेत्र ऊपर थे और ऊपर से देख रहा था भगवान आ रहे हैं, मैंने भगवान को पुकार और भगवान आ रहे हैं। तो उसी समय उसने सोचा कि मैं क्या करूं, अब तो एक तो सरस्युरुबले, एक तो वो पानी में था, ऊपर से घड़ियाल ने पकड़ा हुआ था, भगवान आ रहे हैं। सोचे भक्तों, यदि भगवान हमारी रक्षा करने के लिए साक्षात पधारे तो हमें क्या सोचना चाहिए कि अभी मैं भगवान का स्वागत कैसे करूं, क्योंकि भगवान जब आए हैं तो जाहिर कुछ ना कुछ तो उनके लिए हमें भी करना चाहिए। तो उसी तरह से गजेंद्र ने भी बहुत ही सुंदर रीति से भगवान का स्वागत किया उसी अवस्था में। उत्क्षिप्य साम्बुज कर गृहमाह कृच्छा यानी बहुत ही मुश्किल, आह कृच्छा बहुत ही मुश्किल से स्तुति की, लेकिन सबसे पहले क्या किया, उत्क्षिप्य उठाया, साम्बुज करम एक कमल का फूल, अम्बुज कहते हैं कमल को और करम मतलब अपने सूंड, उनका जो हाथ है ना जैसे हमने कहा था सूंड को हाथ कहते हैं, तो कमल का फूल अपनी सूंड से उठाया और भगवान को समर्पित किया, भगवान को अर्पण किया। उत्क्षिप्य साम्बुज करम गिरमाह कृच्छम और बहुत ही कठिनाई से बहुत ही मुश्किल से भगवान को तीन नामों से पुकारा, क्या कहा, नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान पाकर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए लेकिन बहुत दुखी थे, इसलिए इससे अधिक बहुत ही मुश्किल से बस इतना ही कह सके, कृच्छ्रा बहुत कष्ट था उनको और कुछ बोल नहीं सके, बहुत बड़ी स्तुति गाली थी। अब भगवान को देखकर उनका कंठ रुद्ध गया था, अब और वो कुछ बोल नहीं सके। भगवान को एक कमल का फूल समर्पित किया और कहा, हे नारायण, हे अखिल गुरु, विश्व के स्वामी, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनुवाद, घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था, किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड से कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे। हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गजेंद्र भगवान का दर्शन पाने के लिए इतना इच्छुक था कि जब उसने भगवान को आकाश में आते देखा तो उसने अत्यंत ही पीड़ा से तथा मंद स्वर में भगवान को नमस्कार किया। भक्त भयावह स्थिति को भी भयानक नहीं मानता, क्योंकि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में वह अत्यंत आनंद से भगवान से प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार भक्त संकट को एक सुअवसर मानता है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणा, जब भक्त विकट संकट में होता है तो वह इस संकट को भगवान की महती कृपा मानता है, क्योंकि यह संकट निष्ठा पूर्वक तथा एकाग्र चित्त से भगवान का चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात् मकृतिम विपाकम, भागवतम 10.14.8। वह भगवान पर दोषारोपण नहीं करता कि उनके कारण भक्त ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में फंस गया है, प्रत्युत वह अपनी संकटपूर्ण स्थिति को अपने विगत दुष्कर्मों का फल मानता है और इस अवसर को भगवान की प्रार्थना करने का सुयोग समझता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि उसे ऐसा अवसर मिला। जब भक्त इस प्रकार रहता है तो उसकी मुक्ति भगवत दाम पुनरागमन सुनिश्चित रहती है। हम इसकी सत्यता गजेंद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि उसने अत्यंत ही आतुरता से भगवान की प्रार्थना की और इस तरह उसे तुरंत ही भगवत धाम लौट जाने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि जब हमारे ऊपर कोई संकट का अवसर आए तो हमें भगवान पर दोष आरोपण नहीं करना चाहिए कि देखो भगवान तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। भगवान को गजेंद्र ने एक बार भी नहीं कहा कि भगवान देखो मेरे साथ क्या कैसा हो रहा है। भगवान जितनी दफा भी उसने कहा, बस यही कहा कि मुझे आप इस संकट से बचाइए। मैं बल्कि इस साधारण भौतिक संकट से, प्रेजेंट संकट से खाली नहीं बचना चाहता, मैं तो अपने वास्तविक स्वरूप को पाकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इस संसार में तो दुख आते रहेंगे, मैं ये मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिल रहे हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी संकट, जो भी दुख आते हैं हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल रहे हैं, तो उस संकट में भी हमें प्रेम से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अवश्य रिस्पॉन्स देते हैं, भगवान अवश्य आते हैं। तो भगवान की लीला बहुत ही आकर्षक है कि गजेंद्र की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान बहुत कृपामयी है और ये लीला भगवान के कृपामयी स्वभाव को प्रकट कर रही है। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। भक्त यदि शुद्ध हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य आते हैं। तो आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तम वीक्ष पीड़ितमज सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयोच्चहार ग्राहात् विपाटत मुखादरिण गजेन्द्रम् संपश्यताम हरिरमो मुचदुच्चिर श्रियाणाम् तम वीक्ष्य पीड़ितमज सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयोच्चहार ग्राहात् विपाटित मुखा धरिण गजेन्द्र संपश्यताम हरिरमो मुचुदुच्चयाणा तं वीक्ष्य पीडितमज सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयोच्चहार ग्राहाद्विपाटितमुखाधरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुचु च दुच्छ्रियाणाम्। शब्दार्थ तम वीक्ष्य, जब भगवान ने देखा, पीड़ितम अज, भगवान जो कि अज हैं, उन्होंने अपने भक्त को इतना पीड़ित देखा, इतना दुखी देखा, तो सहसा अवतीर्य, अचानक से, सहसा कुछ बोला नहीं, अचानक से गरुड़ से अवतीर्य नीचे उतर गए, मतलब गरुड़ को बोला नहीं कुछ भी, बस बोला होगा तो भी खाली इतना कहा होगा कि तुम कितना सिलो चल रहे हो, देख नहीं रहे कि मेरा भक्त कितना दुखी है, तो कुछ भी बोला नहीं, बस फटाफट से नीचे उतर गया। भगवान नीचे आए और सग्राहमाशु सरस कृपयोज्जहार, सग्राह, अब भगवान ने नीचे, भगवान देखो, अब गरुड़ कैसे चलता है, भगवान के मन की गति से चलता है, लेकिन हम जानते हैं मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्मा, और आत्मा से परे है परमात्मा। इसका मतलब है मन से ज्यादा स्पीड है बुद्धि की, बुद्धि से ज्यादा स्पीड है आत्मा की, और आत्मा से ज्यादा स्पीड है परमात्मा की। तो भगवान कितना जल्दी उतरे होंगे और कितना जल्दी वहां पर पहुंचे होंगे, भगवान एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड भी नहीं हुआ होगा, पलक भी नहीं झपकी होगी, भगवान वहां पर पहुंच गए जहां पर घड़ियाल थे, जिसने घड़ियाल ने गजेंद्र को पकड़ा हुआ था, फौरन वहां से पहुंचे। अच्छा, एक भक्त तो यहां तक कह रहे थे कि गरुड़ बहुत तेज चल रहा था, लेकिन जैसे भगवान उतरे तो गरुड़ को बहुत ही लज्जा आई कि भगवान मैं क्या करूं, मेरी स्पीड है ही इतनी, लेकिन भगवान तीव्रता से गए, उसको बचाकर जब वापस आ रहे थे ना, रास्ते में अभी तक गरुड़ वहीं पर, मतलब रास्ते में मिला, वैसे भगवान इतना तीव्रता से नहीं चलते हैं, है ना। भगवान ने गजेंद्र जी को बचाने के लिए अद्भुत तीव्रता दिखाई। वैसे साधारणतया भगवान बहुत ही आनंद से धीरे धीरे गरुड़ पर चलते हैं, क्योंकि भगवान जैसे मन की गति से गरुड़ चलता है, तो अगर धीरे धीरे भी चल रहा होता है तो भी भगवान उतना ही जल्दी पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचना होता है। लेकिन आज गजेंद्र को बचाने के लिए, क्योंकि पीड़ित बहुत ज्यादा दुखी थे, तो भगवान को ऐसे लग रहा था, आनंद नहीं आ रहा था, भगवान और भी सोच रहे थे कि मेरा भक्त कितना ज्यादा दुखी है, कहीं उसको कुछ हो न जाए, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मैं उसको जल्दी से जाके बचाऊं। तो यहाँ पर भगवान की भक्त वत्सल्यता को दिखाया गया है कि भगवान अपने भक्त को संकट में देख ही नहीं सकते हैं, तो अपने आनंद को छोड़ के, भगवान अपने वाहन को छोड़ के आगे बढ़े, और जैसे ही आए आगे, उन्होंने फौरन से क्या किया, गजेंद्र को समुद्र में से निकाला। अब गजेंद्र को निकाल के बाहर रखना चाह रहे थे ताकि ग्राह से छुड़ाए, लेकिन ग्राह ऐसे जोर से उसको मतलब पकड़े बैठा था दांतों से कि ग्राह भी उसके साथ साथ ही आया, छोड़ा नहीं, उसने डरा नहीं कि भी भगवान आ गए हैं मैं छोड़ दूं उसको, ऐसे नहीं, वो जैसे भगवान ने गजेंद्र को बाहर निकाला समुद्र से, तो उसके साथ साथ ग्राह भी आ गया, सग ग्राह माशु सरस कृपयोज्जहार, तो ग्राह के साथ ही भगवान ने पानी से घड़िया गजेंद्र को निकाला, और उसके बाद क्या किया, ग्राहाद्विपाटितमुखात, उसके बाद भगवान ने देखा कि इस घड़ियाल ने अभी तक मेरे भक्त का चरण नहीं छोड़ा है, तो उसका विपाटित मुख, उसका जो मुख है वो सुदर्शन चक्र से भगवान ने फाड़ डाला। और अरिणा गजेंद्र, अरिणा कहते हैं कि सुदर्शन चक्र से उसको ग्राहत विपाटत, उसके मुख को फाड़ दिया। भगवान इतना ध्यान से सुदर्शन चक्र चला रहे थे कि देख रहे थे गौर से, संपश्यतम, देख रहे थे कहीं गजेंद्र को ना लग जाए। और ये भी देख रहे थे कि किस तरह से मुख में दांत दांतों में ही उसने टांग को पकड़ा हुआ है, अगर अचानक से लगे ऐसा ना टांग में लग जाए उसकी, है ना, तो ध्यान से संपश्यताम हरि रमो चदुकिरिच्छयाणा कि बहुत ही ध्यान से भगवान ने उसके मुख को फाड़ा और इस प्रकार से हरि ओमो यानी कि भगवान ने उस गजेंद्र को उचित का मतलब होता है बचा लिया, छुड़ा दिया। और उसके बाद वहां पर जो सारे देवी देवता आए थे ना उच्छयाणा, वो सब देख रहे थे आंखें फाड़ के, सभी देवता देख रहे थे। इस तरह से भगवान को अपने भक्त की रक्षा करते हुए मानो भगवान ये भाव व्यक्त कर रहे थे। सारे देवताओं को कुछ बोला नहीं भगवान ने कि देखा नहीं तुमने मेरा भक्त संकट में था और तुम लोग सब मुंह पकड़ के तमाशा देख रहे थे। भगवान ने कुछ भी बोला नहीं। तो जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, कोई साधारण कार्य करने के लिए बहुत तेजी से आए और छोटे लोगों को कुछ भी नहीं बोले ना, तो ये समझना चाहिए कि वो हमसे रुष्ट है। जैसे अगर हम कभी देखते हैं टेम्पल में कोई सीनियर भक्त आता है और हम सब साथ में होते हैं, फिर वो सीनियर देखता है कि देखो कितनी गंद पड़ी हुई है, वो झाड़ू उठाता है, वो झाड़ू लगाने शुरू हो जाता है, तब सारे जो सीनियर होते हैं उनको शर्म आती है कि देखो ये ना, सारे जो छोटे भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि देखो हमें करना चाहिए था, ये तो सीनियर डिवोटी है, ये झाड़ू निकाल रहे हैं, तो उनको लज्जा आती है ना। उसी प्रकार भगवान इतने से काम के लिए वहां से आ रहे हैं और देवता लोग देख रहे हैं, तो देवताओं को बहुत लज्जा आ रही थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठा था कि किसी ने बोला क्यों नहीं कि भगवान आप छोड़ो हम कर रहे हैं ये छोटा सा काम। जैसे अगर कोई सीनियर हमारे सामने झाड़ू निकालेगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रभु आप छोड़िए मैं करता हूँ, ऐसे बोलेंगे ना। तो क्या देवताओं को इतनी लज्जा आ रही थी, उनको बोलना चाहिए था ना भगवान आप रुकिए हम करते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि देवता तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गए थे, स्तंभित हो गए थे, स्टेचू बन गए थे कि वो तो भगवान के वात्सल्य को देख रहे थे कि कृष्ण कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, कैसे वो सरोवर से गजेंद्र को निकाल रहे हैं, कैसे ग्राह का घड़ियाल का मुख काट रहे हैं, और उसके बाद जहां पर उसने पकड़ा था उस जो टांग है उसको भगवान सहला रहे हैं, वहां भगवान अपने कर कमल से ऐसे हाथ से उसको सहला रहे हैं। जैसे भगवान का स्पर्श हुआ तो उसी क्षण गजेंद्र जी चतुर्भुजी पार्षद बन गए, मरे नहीं। ऐसा नहीं था कि वहां पर हाथी का शरीर मरा हुआ पड़ा था, अगर हाथी का शरीर वहां पर मरा हुआ पड़ा होता तो साधारण संसार यही कहता ना क्या रक्षा की, हाथी तो मर ही गया ना। तो भगवान की रक्षा बहुत विलक्षण, हाथी का शरीर ही पार्षद का शरीर बन गया, मरे नहीं वो। तो भगवान ने दोनों काम किए, एक तो ग्राह से भी छुड़ाया और जो प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान मैं आपके धाम में आना चाहता हूँ, तो भगवान के स्पर्श मात्र से मतलब वो गजेंद्र मुक्त हो गए। अब स्पर्श मात्र से जैसे भगवान का खाली नाम भी लिया जाए तो भी जीव इस संसार संकट से इस भव सागर से मुक्त हो जाता है, तो भगवान यहाँ पर तो साक्षात आए हैं, उनको स्पर्श प्राप्त हुआ है, तो भला इसमें क्या संदेह है कि उनकी मुक्ति हुई होगी। तो बहुत ज्यादा भगवान की कृपा यहाँ पर दिख रही है कि वो किस तरह से अपने भक्तों को बचाने के लिए अपने वैकुंठ धाम को अपने गौलोक को छोड़कर इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि तुरंत ही अहितु की कृपावश गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल से बाहर खींच लिया। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के अंतर्गत गजेंद्र की समर्पण स्तुति नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हमने देखा कि गजेंद्र ने जब स्तुति गाई तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और साक्षात भगवान वहां पर प्रकट हो गए और गजेंद्र को संकट से उबारा। इसलिए हमारा ये लक्ष्य था कि हम इस कार्तिक मास में इस स्तुति को गाएंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे और हम भी, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी इस संसार में, वो गजेंद्र को घड़ियाल ने पकड़ा था लेकिन हमें तो सबको माया ने पकड़ा हुआ है, तो माया के चंगल से यदि हमें बचना है तो भगवान की स्तुति को याद करना चाहिए और हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसी स्तुति गानी चाहिए। और जैसे ही भगवान आए, गजेंद्र को जैसे बचाया, तो एक दिन हमें भी इस मोह माया से, इस भाव सागर से बचाकर अपने वास्तविक स्वरूप प्रदान हमारा करेंगे। और इसके पास जब गजेंद्र की मुक्ति हो गई तो सारे देवताओं ने फ्लावर्स बरसाए और बहुत ज्यादा गाना बजाना किया, बहुत मजा किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छी तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।